ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो चौथे स्कंद और 30वें अध्याय का आज 49वां श्लोक हम सब चर्चा करेंगे। कृपया सब हमारे साथ साथ बोलेंगे। चाक्षुषे त्वन्त्रे प्राप्ते प्राक्सर्गे काल विद्वते यः ससर्जा प्रजा इष्टा शादक्षो देवचोदितः। चाक्षुषे त्वन्त्रे प्राप्ते प्राक्सर्गे काल विद्रते यः ससर्ज प्रजाष्टः शादक्षो देवचोदितः। चाक्षुषे त्वन्त्रे प्राप्ते प्राक्सर्गे काल विद्रते यः ससर्ज प्रजाष्टः सादक्षो देवचोदितः। कहते हैं कि चाक्षुष है, चाक्षुष नामक तो लेकिन अंतरे मनवंतर प्राप्त आने पर प्राक पूर्व सर्गे सृष्टि काल विद्रते काल क्रम से विनष्ट यह जो ससर्ज उत्पन्न किया प्रजा जीव इष्टा इच्छित सह वह दक्षा दक्ष देव भगवान द्वारा चौदिता प्रेरणा पाकर उसका पूर्व शरीर विनष्ट हो चुका था, किंतु उसी दक्ष ने परमेश्वर की प्रेरणा से चाक्षुष मनवंतर में समस्त मनोवांछित जीवों की सृष्टि की। तात्पर्य जगत गुरु श्रील एसी भक्तिविदान स्वामी प्रभुपाद की। ओम अज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञाननजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलां श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावदेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरि प्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च। सब लोग बोल सकते हैं। पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमाम विष्णु पादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी परिचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जैसा कि भगवद गीता 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा गया है, सहस्त्र युग पर्यंतम महे यत्र ब्राह्मणो विदो रात्रिम युग सहस्त्रांतराम तेहरवात्र विदो जना। मानव गणना के अनुसार ब्रह्मा के एक दिन की अवधि 1000 युग है और इतनी ही बड़ी रात होती है। ब्रह्मा के एक दिन में चारों युगों सत्य त्रेता द्वापर तथा कली के 1000 चक्कर लगते हैं। उस एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं और इन मनवंतरों में वे चाक्षुष मनवंतर छठा है। ब्रह्मा के एक दिन के विभिन्न मनु इस प्रकार हैं। नंबर एक होता है स्वयंभुव, स्वरुचिस, उत्तम, तामस, रेवत, चाक्षुष, वेवस, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी तथा इंद्र सावर्णी। इस प्रकार ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं और एक वर्ष में 5040 मनु होते हैं। ब्रह्मा को 100 वर्ष जीवित रहना होता है, फलत ब्रह्मा के जीवन में कुल मनुओं की संख्या 5,04,000 होती है। ये गणना एक ब्रह्मांड की है और ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं। ये समस्त मनु महाविष्णु की श्वास क्रिया मात्र द्वारा आते जाते रहते हैं, जैसे कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, यस्य कनिश्चित कालमत्वालम्बे जीवंती लोम बिलजा जग दंडनाथ विष्णुर्मांसा यस्य कला विशो गोविंदवादिम पुरुषम तमम भजामि। कहते जगदंडनाथ का अर्थ है ब्रह्मा। ऐसे असंख्य जगदंडनाथ हैं, अतः हम अनेक मनुओं की गणना कर सकते हैं। ये युग वेवस्व मनु के नियंत्रण में है। प्रत्येक मनु 4,32,000 गुणा 71 वर्ष तक जीवित रहता है। वर्तमान मनु पहले ही 4,32,000 गुणा 28 वर्ष पूरा कर चुका है। अंत में इन सारे दीर्घ जीवनों का भौतिक प्रकृति के नियमों से विनाश होता है। दक्ष यज्ञ का विवाद स्वयंभुव मनवंतर काल में हुआ, फलस्वरूप शिव जी ने दक्ष को दंडित किया, किंतु शिव जी की स्तुति करके उसने पुनः अपने पूर्व ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार दक्ष ने 5वें मनवंतर तक घोर तपस्या की। इस तरह चाक्षुष नामक 6ठे मनवंतर के प्रारंभ में शिव के आशीर्वाद से दक्ष को पूर्व वैभव प्राप्त हो सका। भगवान बताते हैं कि दक्ष का शरीर नष्ट हो चुका था। दक्ष कौन है? दक्ष महादेव शिव के ससुर भी हैं और सती महारानी के पिता हैं। जब शिव जी के साथ अपनी पुत्री सती का विवाह कर दिया तो शास्त्रों में वर्णन है, धन ज्यादा आ जाए हमारे पास, रूप ज्यादा आ जाए, ज्ञान ज्यादा बढ़ जाए या कोई पद मिल जाए तो हमें कभी कभी अभिमान हो जाता है। तो दक्ष प्रजापति के जब शंकर जी दामाद हो गए तो 33 करोड़ देवी देवताओं में दक्ष प्रजापति का सम्मान बढ़ गया, प्रतिष्ठा बढ़ गई। लेकिन जैसे ही पद मिला धीरे धीरे उनके अंदर अभिमान आ गया। और एक बार जब देवताओं की बैठक चल रही थी, दक्ष प्रजापति उस बैठक में आने वाले थे, तभी महादेव शंकर जी ने सोचा कि जितना समय लग रहा है उनके आने में तब तक मैं थोड़ा भगवान का नाम जप लेता हूँ, महामंत्र नित्य जपे महेश। और महादेव शंकर क्या करने लगे? वो भगवान के दिव्य नामों का जप करने लगे। और जप करते करते वो लीन हो गए। इतने में ही वहाँ प्रजापति ने प्रवेश किया और दक्ष प्रजापति के प्रवेश करते ही सारे देवी देवताओं ने उनकी प्रशंसा करी, स्वागत करा, लेकिन महादेव बैठे रह गए। इसी बात से खिन्न होकर उन्होंने महादेव को कुछ अपशब्द बोल दिए, कुछ ऐसी भाषा बोल दी जो शिवगणों को अच्छा नहीं लगा और शिवगणों ने दक्ष प्रजापति के ऊपर आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन महादेव शिव ने उनको रोक दिया। और जब विवाद ज़्यादा बढ़ता गया तो महादेव जी उस सभा से चले गए। महादेव जी के वहाँ से जाते दक्ष प्रजापति और ज़्यादा उग्र हो गए और यहीं से ये विवाद आगे बढ़ने लगा। यहाँ तक बढ़ा कि जब एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ तब सारे देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन शिव जी के पास निमंत्रण नहीं भेजा गया। सती महारानी ने जब देखा कि बहुत सारे देवी देवता, किन्नर, गंधर्व, मानव, सब प्रजातियाँ उस यज्ञ में सहभागिता करने के लिए जा रही हैं, तो उनका भी हृदय ललायित हो गया और वो भी अपने पति जिसे कहने लगे कि हम भी चलते हैं। कहते नहीं नहीं, मैं मान हूँ और मान को बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। तब महादेव नहीं गए, लेकिन सती महारानी जो थी वो उस यज्ञ में चली गई। यज्ञ में जाकर देखती हैं कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वहाँ पर स्थान भी है, नाम की पट्टिका भी लिखी, लेकिन उनके पति महादेव का कहीं भी नहीं है। इससे कुपित होकर सती महारानी उसी हवन कुंड में सती हो गई। ये जब शिवगणों ने देखा तो वो दक्ष प्रजापति के ऊपर आक्रमण के लिए लपके, लेकिन उसी समय उस यज्ञ में भृगु ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ की जलती हुई संहिता के द्वारा शिवगणों पर आक्रमण किया गया और उनको वहाँ से भगा दिया गया। शिवगणों ने आकर शिव जी को ये वृतांत सुनाया कि सती महारानी सती हो गई है, लेकिन शिव जी निर्विकार रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उसी स्थान पर कुछ समय बाद नारद जी वहाँ प्रकट हुए। नारद जी ने कहा, महाराज कि ऐसे ऐसे सती महारानी को ऐसा वातावरण बना दिया गया कि उनको विवश होकर आत्महत्या करनी पड़ी, वो सती नहीं हुई है। तब इन्हें शिव जी को क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी जटा का एक बाल तोड़कर जैसे पृथ्वी पर छोड़ा, पृथ्वी से स्पर्श करते ही उसने वीरभद्र नाम के बहुत ही प्रलयकारी शिवगण का रूप धारण कर लिया। कहा, क्या आज्ञा है महादेव? कहा कि जाओ, दक्ष प्रजापति का वध कर दो। और बड़ी प्रचंड वेग से जब वीरभद्र वहाँ से चले तो उनके जैसे अनेकों हजारों शिवगण बनते चले गए और उन्होंने जाकर दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस कर दिया और उनका सिर काटकर हवन कुंड में डाल दिया। हाहाकार मच गया, सारे देवी देवता भागे, भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे। कहा, महाराज आज तो लग रहा है शिवगण सबको नष्ट कर देंगे। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि चलो आप महादेव जी के पास चलो, हम भी चल वहाँ आते हैं। देवतागण आश्चर्यचकित रह गए कि जो शिव हमसे रुष्ट हैं और भगवान उन्हीं के पास हमें पुनः भेज रहे हैं, क्योंकि भगवान जानते थे कि शिव जी परम वैष्णव हैं। वैष्णव का सबसे बड़ा गुण क्या होता है कि अगर आपने उसके चरणों में कोई अपराध कर दिया और जैसे ही आप अगले क्षण उससे क्या मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, तो वो तुरंत क्या कर देता है, वो क्षमा कर देता है। ये वैष्णव की सबसे बड़ी पहचान है। वैष्णव की पहचान तिलक से और कंठी माला से, चोटी से, ये तो अलग चीज़ है, लेकिन अगर सबसे बड़ी आप पहचान करना चाहते किसी वैष्णव भक्त की तो वो यही है कि आपका कितने से भी कितना बड़ा अपराध हो, वो आपको एक क्षण में क्या कर दे, क्षमा। बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। जो लोग उत्पात मचाते हैं वो तो साधारण आत्मा रहते हैं, लेकिन जिनके अंदर क्षमा करने का गुण होता है उसको महात्मा बोलते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि जैसी को कृष्ण भावना भावित हो जाता है वो स्वतः ही समाज के सत्ता से ऊपर उठ जाता। उसकी गिनती फिर साधारण लोगों में नहीं होती, साधारण मनुष्यों में नहीं होती। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप शिव जी के पास जाओ, हम आते हैं। तब वहाँ भगवान पहुँचे, प्रकट हुए, साथ में राधा रानी भी हैं। जब शिव जी से इन देवी देवताओं ने, भृगु ब्राह्मणों ने, सब ने क्षमा मांगी तो उन्होंने क्षमा कर दिया और भगवान ने कहा शिव जी कि सती महारानी कुछ समय के बाद हिमवान और मैना के यहाँ पार्वती के रूप में प्रकट होंगी, आप उनका वर्णन करना। ऐसा भगवान शिव जी को आशीर्वाद देकर सारे देवी देवताओं का भय समाप्त करने के बाद वहाँ से चले गए। ये जो विवाद शुरू हुआ, जो इसमें वर्णन है कि वो पहले मनमंत्र में हुआ ये विवाद। अब आगे 5 जो मनमंत्र आए तो उसमें दक्ष प्रजापति ने तपस्या करी, क्योंकि जिस समय इनका सिर काटा गया भगवान ने कृपा करी, तब इनके सिर को काटकर इनके सिर के ऊपर एक बकरे का सिर जोड़ दिया। तो पांच मनवंतर तक तपस्या करने के बाद इन्होंने शिव जी को प्रसन्न करा। शिव जी, कभी आप लोगों के सामने ऐसी चर्चा आ सकती है कि वो भस्म क्यों लगाते हैं, ऐसा क्या हो गया, उन्होंने सारे ऐश्वर्य क्यों त्याग दिए। उसकी मैं इसलिए आपसे चर्चा कर रहा हूं कि परम वैष्णव होने के नाते थोड़ा सा हमें उनके इस रूप के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। जिस जगह सती महारानी सती हुई थी, उस स्थान पर जब शिव जी गए तो उनको एक हृदय में विशेष प्रेम आ गया। वो अपनी सती के साथ जो भूतकाल था उनकी स्मृतियों को याद करके भाव विह्वल हो गए, और जैसे उन्होंने उस सती की राग को अपने हृदय से लगाया, उनको विशेष आनंद की प्राप्ति हुई। और उसी दिन से ये शिव जी इस चिता की राग को क्या करने लगे, भस्मी बनाकर अपने शरीर पर धारण करने लगे थे। इन्होंने सोचा कि मैं अब विवाह नहीं करूंगा। इसी बात का फायदा उठाकर एक तारक नाम का असुर था, उसने घनघोर प्रार्थना करी, ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के बाद बोला कि मुझको अमरता का वरदान दे दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, भाई मैं खुद अमर नहीं हूं, जैसा कि श्लोक में आपने पढ़ा ब्रह्मा की खुद आयु 1000 वर्ष, वो 100 वर्ष है, लेकिन ब्रह्मा जी का जो गणना का जो घड़ी है उसमें 12 घंटे, 1000 कलियुग, 1000 द्वापर, 1000 त्रेता, 1000 सतयुग, ये 4000 युग मिलाकर ब्रह्मा जी के 12 घंटे बनते, और इतनी लंबी ब्रह्मा जी की रात्रि होती। अब आप लगा लीजिए, इस समय ब्रह्मा जी 50 वर्ष को क्रॉस कर गए। तो जैसा कि एक कथा आती है भागवत में, ब्रह्मा जी का मोह, जब भगवान बाल लीला कर रहे थे वृंदावन में, तो एक बार उन्होंने देखा कि ये गाय चराते हैं, माखन चुराते हैं, तो उनको भगवान की परम सत्ता के विषय में संदेह हो गया कि शायद ये भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान का काम गाय चराना नहीं है, भगवान का काम वस्त्रण करना नहीं है, भगवान का माखन चुराना नहीं है। ऐसा संशय करके ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी भी जीव ही हैं, इस सृष्टि के पहले जीव हैं, जैसा कि आपने ब्रह्म संहिता में पढ़ा कि इंद्र गोप कीड़े से लेकर ब्रह्मा जी तक एक ही आत्मा है, एक ही साइज है उसका, लेकिन वो पहले जीव हैं, भगवान के नाभि से उनकी उत्पत्ति हुई है। तो ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्मा के पद के कारण, ऐश्वर्यों के कारण थोड़े से वो अज्ञान में चले गए, और भगवान की परीक्षा लेने की उन्होंने हृदय में ठानी। और जैसे वृंदावन पहुंचे तो भगवान और दिव्य लीला कर रहे थे। भगवान बाल गोपालों के साथ उस दिन सामूहिक भोज कर रहे थे। सबसे गरीब ब्राह्मण बालक था वहां पर मधुमंगल, वो बेचारा बासी रोटी लाता था, छाछ पीता था, भगवान ने आज उसका भी जब बासी रोटी और छाछ इत्यादि लिया, तब ब्रह्मा जी पेड़ के पीछे देख रहे थे, वो कहने लगे कि अब तो मैं पक्का कह सकता हूँ ये भगवान नहीं हो सकता। ऐसा सोचकर उन्होंने जितने भी वहाँ गाय बछड़े थे और जितने ग्वाले थे, उन्होंने सबको गायब करके एक गुफा के अंदर छिपा दिया। भगवान जब दोपहर का विश्राम करके उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि बलराम के अलावा सब गायब है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अपने ज्ञान से देखा कि अरे ये तो चतुर्मुखी का कार्य, जिसे मैंने 4 मुख दिए हैं स्पेशल, उसने ही आज ये कार्य किया। तब भगवान ने अपनी योग माया से पुनः उतने ही बछड़े, उतने ही ग्वाल वाले उत्पन्न किए और सबके साथ वृंदावन में गए। कुछ समय के बाद ब्रह्मा जी वापस आए। कितने समय के बाद? कुछ समय के बाद। कभी कभी जब हम कथाओं में चर्चा करते हैं इस बात की तो लोग भ्रमित हो जाते, जिसके 12 घंटे में 4000 युग निकल जाते हो तो उसका कुछ समय के बाद वापसी आने का मतलब आप समझिए खुद। ब्रह्मा जी कुछ समय के बाद पुनः जब वापस आए तो देखते हैं
कि ब्रज में सब कुछ सामान्य है, सारे बछड़े सारे ग्वाले सब पहले जैसे। सोचा कि कान्हा बहुत कुशार्क बुद्धि के हैं, शायद इनको पता लग गया होगा। जाकर भागे भागे गए उस गुफा में, जाकर देखा उस पत्थर को हटाकर जैसे ही अंदर देखा तो सारे ग्वाल वाले सारे बछड़े सारी गाय वैसी अचेत पड़ी है। तब ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और ब्रह्मा जी भागे भागे गए, लेकिन आज भगवान के दर्शन उनको नहीं हुए। जैसे हम संशय करते हैं, जैसे आप दशनाम अपराध पढ़ते हो तो उसमें साफ साफ लिखा है किसी भी वैदिक शास्त्र का खंडन करना या उसको नकारना यह भी क्या है, एक अपराध है। अगर हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदे सर्व कारण कारण, तो हमें शास्त्र के आधार पर अपने गुरु परंपरा से जो हमें ज्ञान मिला है उसके आधार पर हमें 100% विश्वास होना चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है, श्री कृष्ण है। चैतन्य महाप्रभु का आदेश है कि केवल केवल भगवान कृष्ण ही एकमात्र भगवान है, बाकी सब उनके दास हैं। तो जैसे ही ब्रह्मा जी को ये पता लगा मुझसे त्रुटि हो गई है, वो क्षमा मांगने के लिए जाने लगे, लेकिन कहीं ठाकुर जी ने उनका दर्शन नहीं दिए, क्योंकि संशयात्मा के लिए भगवान ने कहा कि ना तो इस लोक में ना परलोक में कोई स्थान नहीं है, इसलिए हमें संशय नहीं करना, हमें संदेह नहीं करना। अब ब्रह्मा जी को जब दर्शन भगवान ने दिए तो उन्होंने ब्रज में दर्शन नहीं दिए, उन्होंने वैकुंठ में दर्शन दिए। और कहते हैं कि वहां पर ब्रह्मा जी को भगवान ने अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक का रूप दिखाया। भगवान का कभी कभी हम ये जब नाम उपाधि के साथ पढ़ते हैं तो शीघ्रता से निकल जाता है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, लेकिन अनंत का मतलब होता है असंख्य, कोटि का मतलब होता है करोड़ों, अर्थात तो जिस तरीके से हमारा ये ब्रह्मांड है जिसके अंदर हमारी पृथ्वी स्थित है, ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं और सारे ब्रह्मांडों में ऐसी ही लीला चलती है। उन सारे ब्रह्मांडों के एकमात्र स्वामी कौन है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। आज के श्लोक में आपने पढ़ा कि भगवान जब श्वास लेते हैं महाविष्णु के रूप में तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड उनके अंदर समाते हैं, और जब वो सांस छोड़ते हैं तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड की उसमें उत्पत्ति होती। इसी ब्रह्मांड की लीला इस समय इस श्लोक में चल रही है जिसमें दक्ष प्रजापति का वर्णन है। इन्हीं ब्रह्मा जी से वर ले लिया तारक नाम के असुर ने, कहा मुझको अमर कर दो, कहा भाई मैं खुद अमर नहीं हूं तो आपको कहां से अमर करूंगा। कहते फिर अच्छा एक काम कर दो। बोले क्या? बोले अगर मैं मरूं तो शिवजी के पुत्र से मरूं, महादेव के पुत्र से मरूं, क्योंकि तारक जानता था कि अब महादेव जल्दी से दूसरा विवाह करने वाले, वो सती महारानी के वैराग में रहते हैं, भगवान की भक्ति में मस्त रहते हैं, बस अब वो संसार के किसी बंधन में बनने वाले नहीं। तब ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है मैं आपको ये वचन दे देता हूं कि आपकी मृत्यु होगी तो केवल किसके हाथ होगी, शिव जी के पुत्र। और तारक ये वरदान प्राप्त करने के बाद उद्दंड हो गया और उसने महान अत्याचार करने शुरू कर दिए। जब असुरों को अपनी सत्ता स्थापित करनी होती है तो जो भक्तों के ज्ञान के साधन होते हैं श्रुति स्मृति और पुराण, इनको नष्ट करने का प्रयास करते हैं ताकि आपका ज्ञान भ्रमित हो जाए, आपका ज्ञान प्रदूषित हो जाए, अपवित्र हो जाए और आपका जो मार्ग है आप उससे भटक जाओ। तारक के अत्याचारों से त्रस्त होकर सारे लोग देवी देवता भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे, तो महाराज कृपा करें इस असुर का अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है। तब भगवान ने शंकर जी से कहा कि आप पार्वती से विवाह करिए और आपके और पार्वती के योग से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही इस असुर को मार सकता है, ऐसा ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया। काफी कालक्रम की घटनाओं के बाद महादेव का पार्वती के साथ विवाह हुआ। देवी देवताओं की प्रार्थना पर जब वो पुत्र के योग के लिए तैयार हुए तो उस समय पार्वती मैया सो गई। तब इन महादेव का जो तेज था वो पृथ्वी के ऊपर प्रकट हो गया, और पृथ्वी पर जब प्रकट हो गया तो चातक नाम के पक्षी ने, वो अग्नि देवता ने चातक नाम के पक्षी बन के उसको अपने पेट में धारण कर लिया। लेकिन वो ज्यादा समय तक महादेव के तेज को संभाल नहीं पाए तो उन्होंने नदी में को डाल दिया। जब नदी भी उसको नहीं संभाल पाई तो उन्होंने सागर में डाल दिया, और उस समय सागर में सप्त ऋषियों की जो पत्नियां थी वो स्नान कर रही थी, जिनको कृतिका कहा जाता है। ये सप्त ऋषियों की पत्नियां वहां स्नान कर रही थी, और उस तेज के समुद्र में मिलने से वहां एक सुंदर बालक प्रकट हो गया। उस बालक का करुण रुंदन सुन के इन सप्त ऋषियों की पत्नियों ने उनको गोद में ले लिया, उसको वात्सल्य प्रेम से स्तनपान कराया, उसका पालन पोषण किया, और बच्चा प्रसन्न हो गया। कृतिकाओं के द्वारा पोषित होने से इस बच्चे का नाम कार्तिकेय पड़ गया। क्या पड़ा? और इस कार्तिकेय ने ही उस तारक नाम के असुर का वध किया। ये कार्तिक जो है ये हमारे देवी देवताओं के सेनापति। जिस समय भगवान ने रणछोड़ लीला करी थी, जब काल यवन के साथ भगवान का युद्ध चला, तो भगवान ने एक दिव्य लीला दिखाई जो शास्त्रों में कहीं वर्णित नहीं है। भगवान कभी भी मैदान छोड़कर नहीं भागे, लेकिन धर्मम तो साक्षात भगवत परिणीतम, अगर हम भगवान की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो हम धर्म पर चल रहे हैं। भगवान की आज्ञा गीता में हमें मिलती है। ये जो गीता है ये भगवान के मुखारविंद से प्रकट हुई है, इसलिए हमें गीता के एक एक शब्द का अक्षर सा पालन करना चाहिए, उसके नित्य हमें पढ़ना चाहिए, लोगों को पढ़वाना भी चाहिए। और जैसा कि आप जानते हो हमारे अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के जितने भक्तगण हैं करोड़ों के हिसाब से गीताओं को घर घर तक पहुँचाते। ये गीता मात्र टारगेट नहीं है, ये गीता प्रत्येक घर में जानी चाहिए। गीता को प्रत्येक मनुष्य के जीवन में हमें सम्मिलित करने का प्रयास करना चाहिए, ऐसी प्रभुपाद जी की भी आज्ञा है, और भगवान भी इस हमारे कार्य से बड़े प्रसन्न होते हैं। तो धर्मम तो साक्षात भगवत परिणीतम, अगर हम भगवान की आज्ञा का पालन करते रहेंगे तो हम धर्म धार्मिक हैं, पूरी तरीके से आध्यात्मिक हैं। कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी का मोह भगवान ने दूर कर दिया, उनको विभिन्न प्रकार के ब्रह्माओं के दर्शन करा दिए, और सबके सब भगवान की स्तुति कर रहे थे, इधर भगवान ने जो लीलाएं करी कि जरासंध कंस का ससुर था, और जैसे ही भगवान कृष्ण और बलराम ने, जिनके मंदिर में हम लोग बैठे हैं, दो ही मंदिर हैं कृष्ण बलराम जी के, एक आपके यहाँ है और दूसरा भुवनेश्वर है, प्रभुपाद जी का 108वां जो ड्रीम प्रोजेक्ट था वो भी एक कृष्ण बलराम ही हैं भुवनेश्वर में। तो जैसे कृष्ण बलराम जी ने कंस का वध किया तो कंस की दो पत्नियां थी आस्ती और प्राप्ति, वो दोनों विधवाएं हो गई। और जैसी ये खबर जरासंध महाराज के पास पहुंची तो उनके अंदर 60,000 हाथियों का बल था और 23 अक्षौणी सेना रहती थी उनपे। एक अक्षौणी सेना में लगभग सवा दो लाख लोग होते, लगभग 2,18,750 ऐसे थोड़ा लगभग है मैं, तो 23 का मतलब है लगभग 60 लाख लोगों की सेना जिसके पास हो, 60,000 हाथियों का बल जिसके अंदर हो, और उनकी पुत्रियों को आप विधवा बना दोगे। तो भयंकर क्रोध आया जरासंध को और उसने घोषणा कर दी कि मैं ब्रज पे आक्रमण करूंगा और कृष्ण बलराम को नहीं छोड़ूंगा। जैसी आक्रमण हुआ भगवान ने सारे ब्रजवासियों को रात ही रात विश्वकर्मा जी की सहायता से द्वारकापुरी में स्थानांतरित कर दिया गुजरात में, और केवल ब्रज में कृष्ण और बलराम जी रह गए। भयंकर युद्ध हुआ, भगवान ने सारी सेना को मार डाला और जैसे ही जरासंध के मारने का नंबर आया भगवान ने थोड़ा सा उसको भय दिखाया और भाग गया वो। इस प्रकार वो 17 बार आक्रमण किया उसने 23-23 अक्षौणी सेना के साथ। बलराम जी कहने लगे भैया इसको ही क्यों ना मार देता, ना बांस रहेगा ना बांसरी। भगवान कहने लगे रे भैया देखो ना, सारे पापियों को इकट्ठा करके एक ही जगह लाता है और हमारा काम क्या कर देता है ये, नहीं तो फिर ढूंढ ढूंढ के मारने पड़ेंगे पापी। नारद जी ने और अच्छा काम किया, उन्होंने जरासंध के पास जाकर कहा कि भैया तू ऐसे नहीं जीत सकता, तुझको कालयवन के पास जाना चाहिए जिसके पास 3 करोड़ मलच्छों की सेना। अब तक तो लाखों से लड़ रहा है, अब करोड़ों से लड़। मलच्छ किसको बोलते हैं भाई, मल माने गंदगी होती है, अपवित्रा होती है, और अच्छा जिसको लगता है उसको मलच्छ बोलते हैं, अर्थात जो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, जो गंदगी को ही पसंद करते हैं। हम वैष्णव लोग पवित्र क्यों कहलाते, क्योंकि हम केवल वही खाना पसंद करते हैं जो ठाकुर जी को भोग लगाया होता, और ठाकुर जी जिसका भोग नहीं लगाते हम उसका भक्षण नहीं करते। जो भगवान का भोग लगे बिना प्रसाद खाएगा वो मलच्छों में गिना जाएगा, क्योंकि जिस वस्तु का भगवान को भोग नहीं लगा है उसको हम कभी भी अच्छी या पवित्र मान नहीं सकते। इसलिए प्रत्येक वैष्णव बिना भोग लगाए कभी भी कुछ भक्षण नहीं करता। ये मलच्छ लोग शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, जुआ लाटी सट्टा नशा करते हैं, और वो अपने शरीर को थोड़ा डिजाइन करके खूबसूरत बना के सोचते हैं कि हम संभ्रांत नागरिक हो गए, लेकिन नहीं। जब तक हमारा आहार शुद्ध नहीं होगा, विहार शुद्ध नहीं होगा, तब तक कहते हैं आहार शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति। जब तक हमारा आहार विहार शुद्ध नहीं होगा तब तक हमारी स्मृति शुद्ध होने वाली, चेतना हमारी शुद्ध होने वाली नहीं है। इसलिए हमारे इस्कॉन में सबसे पहले इन्हीं बातों पर ध्यान दिया जाता है। हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, इस सब के अंदर प्योरिटी होनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे प्योरिटी इज द स्योरिटी। जब तक हमारे अंदर शुद्धता नहीं बढ़ेगी हम लोग अपने निश्चित लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते, हम भटक जाएंगे। आज भगवान ने नारद जी के माध्यम से काल यवन का योग जरासंध के साथ करा दिया, और काल यवन ने एक बहुत विचित्र बात बताई कि हे जरासंध मुझे वरदान है कि मैं किसी अस्त्र और शस्त्र से मरने वाला नहीं। जरा भगवान की रणछोड़ लीला का आप रहस्य देखिए। तो काल यवन को जब यह बात पता लगी किसी अस्त्र शस्त्र से मरने वाला नहीं है तो और ज्यादा उसको अच्छा लगा, जरासंध महाराज को भी, कि अब मैं अपने शत्रु से विजय प्राप्त कर लूंगा। 23 अक्षौणी सेना, जरासंध, 3 करोड़ मलच्छ, कालयवन, ये सब लोगों ने मिलकर भगवान के ऊपर आक्रमण किया, और दोनों भाइयों ने बहुत वीरता से, बहुत कुशलता से इन सारी सेनाओं को काटना शुरू कर दिया। बलराम जी जब कालयवन से युद्ध करने लगे कहने लगे भैया जरा आप इधर हो जाओ मैं कर लूं थोड़ा युद्ध, और मलयुद्ध भगवान करने लगे कालयवन से। और देखते देखते भगवान ने बड़ी विचित्र लीला करी, क्योंकि वो तो लीला पुरुषोत्तम है। देखते ही देखते भगवान ने पहले 2 कदम पीछे हटे, अब जैसे ही भगवान 2 कदम पीछे हटे वैसे कालयवन 2 कदम आगे बढ़ गया, भगवान 4 कदम पीछे हट गए, इसका और ज्यादा जो अभिमान था बढ़ता चला गया। भगवान ने तुरंत पलटा खाया और पीठ दिखाकर भागने लगे, बोलो जय जय श्री। जो भगवान की पीठ देख लेता पीठ देखना मना बताया गया, इसलिए हम लोग हमेशा भगवान के सम्मुख खड़े होते, कभी भी भगवान की पीठ देखने के लिए हमें नहीं कहा जाता, पीठ देखना जरा अशुभ माना जाता है। ठाकुर जी की तरफ भी हम पीठ करके नहीं बैठते हैं, क्योंकि किसी को भी पीठ दिखाना क्या माना जाता है, थोड़ा अशुभ माना। आज कालयवन ने भगवान की पीठ देखी और उसने कहा रुक कृष्ण भाग कहाँ रहा है, और भगवान भैया भागने लगे, भगवान तो भागने में तेज है ही, ग्वाल वालों के संग खेले हैं। आगे आगे भगवान ने पीछे पीछे खा लिया बंद, और उसी दिन से देवी देवताओं ने जब ये लीला देखी तो उन्होंने पुष्पों की वर्षा करी और भगवान का एक और नाम पड़ गया, अनंत नाम तो है ही, बोलो रणछोड़ भगवान की। भगवान रणछोड़ के भाग भाग गए और भागते भागते एक गुफा के पास पहुंच गए। उस गुफा में मानदाता महाराज के पुत्र मुचकुंद महाराज निद्रा में लीन थे। ये मुचकुंद महाराज क्यों सो रहे हैं, क्योंकि जो महादेव के पुत्र कार्तिकेय हैं वो जो देवताओं के सेनापति थे, एक बार उनको किसी आवश्यक कार्यवश कहीं जाना पड़ा तो थोड़े समय के लिए वो मानदाता के पुत्र मुचकुंद जी को देवताओं का सेनापति बना गए। बिना पल के झपकाए मुचकुंद महाराज ने देवताओं का क्या करा, रक्षा की, उनकी सेवा की, उनकी निगरानी की। जब भगवान ने उनका यह सेवा देखी तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा कि देखो मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हूं, क्या चाहते हो? कहा महाराज मैं सोना चाहता हूं, निद्रा। हम भी सोना चाहते हैं, हम कौन सा सोना चाहते हैं भगवान से, गोल्ड, कि जल्दी से हमारे घर क्या आ जाए। लेकिन ध्यान रखना दोनों तरीके के सोने खतरनाक है, गोल्ड हो चाहे स्लीपिंग हो। हिरण्यकशिपु का भी अर्थ यही था सोना सोना सोना, ये दोनों सोना हमारे लिए क्या है, जो सो है वो खोता है, जो सोता है वो खोता है, और जो सोना होता है गोल्ड वो भी जरा मैं माया में डाल देता है। तो कहते हैं कि मैं सोना चाहता हूं, निद्रा चाहता हूं, और जो मुझे मेरी इच्छा के बगैर उठाएगा तो मेरी दृष्टिपात होते ही भस्म हो जाए। इधर कालियम ने तपस्या करके वरदान मांग लिया था, मैं किसी भी अस्त्र शस्त्र से ना मरूं, और वो सोचता था जब मेरा कोई वध करने आएगा तो कैसे मारेगा मुझे। दो तरीके के हथियार होते, तीन तरीके का कोई भी हथियार नहीं बना। कुछ हथियार ऐसे होते जो हाथ में लेकर मारे जाते, फरसा होता था, तलवार होती थी, चक्कू होता था, बंदूक है, रिवाल्वर है। कुछ हथियार ऐसे होते दूर से मारे जाते, तीर है, पत्थर है, कश्मीर में पत्थरबाजी चलती है, वो बम का गोला है, परमाणु बम है, ब्रह्मास्त्र। ये अस्त्र और शस्त्र, ये दो ही कैटेगरी होती है, कुछ अस्त्र होंगे और कुछ शस्त्र होंगे, तीसरा नहीं बना। इसलिए इस कालियवन ने वरदान ले लिया था कि मैं अस्त्र शस्त्र से ना मरूं, और वो बेफिक्र हो गया कि अब मैं मरने वाला नहीं हूं। तब भगवान ने ये लीला दिखाई, रणछोड़ लीला। भगवान उसको भगाते भगाते कहां ले गए, उस गुफा में जिसमें कौन सो रहे थे, मुचकुंद महाराज। और भगवान तो एक कोने में तो पक्कर बैठ गए। जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों, मेरा रंग काला यूं क्योंकि जब मैं गुफा में दुबकूंगा अंधेरे में तो उसमें मिक्स हो जाऊंगा, और कालियवन आएगा तो उसको पता नहीं। मेरा रंग काला यूं क्योंकि सारे रंग जब एक साथ मिला दोगे तो उनका कलर कैसा हो जाएगा, बोलो। आज घर जाना पीला लाल हरा नीला सारे कलर मिक्स कर देना, फिर देखना उसका रिजल्ट क्या आएगा, वो कैसा बन जाएगा, काला। इसलिए भगवान कहना चाहते हैं सारी सृष्टि मेरे अंदर ही क्या है आधारित, मैं इसका सार हूं। ये उस फूलों की माला है जिसका धागा नहीं चमकता, मैं धागा हूं, मैं कौन हूं, लेकिन ये सृष्टि की प्रकृति की विभिन्न जो वस्तुएं हैं ये मुझे ढके रहती है, तो मुझको जल्दी से लोग दर्शन नहीं कर पाते। लेकिन वैष्णव लोग इस ऊपर की प्रकृति पर अटकते नहीं है, वो सीधे परंपरा के माध्यम से मुझ तक पहुंच जाते हैं और मैं उनके हृदय में प्रकट हो जाता हूं। भगवान तो एक कोने में छिपकर बैठ गए, और जैसे ही अपने शक्ति और अहंकार के बल पर कालियवन अंदर आया और उसने सोते हुए मुचकुंद महाराज को भगवान कृष्ण समझ लिया, और जैसे ही उनको उठाया और उनकी दृष्टिपात हुआ वहीं भस्म हो गया। बोलो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की। तब मुचकुंद महाराज को दर्शन हुए। कहने महाराज आप बड़े कृपालु हैं, जब मैंने आपसे वरदान तो मांग लिया था कि मैं सोता रहूं, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि कोई मेरा अपना ही अगर मुझको उठा दे तो क्या हो। आप भक्त वत्सल हैं, आप सबका ध्यान रखते हैं। आगे कहते हैं उसी तारक का वध कार्तिकेय महाराज ने किया, और चूंकि दक्ष प्रजापति का थोड़ा चल रहा है तो मैं थोड़ा आपको और बता देता हूं कि महादेव के दो पुत्रों का संसार में बड़ा नाम रहता है, गणेश और किनका, कार्तिकेय का। तो कार्तिकेय तो शिवजी के पुत्र हैं, पार्वती के उधर का उन्होंने प्रयोग नहीं किया, और गणेश जी पार्वती के पुत्र हैं, उसमें शंकर जी का कोई रोल नहीं रहा। ये दिव्य लीलाएं सब भगवान की तुष्टि के लिए प्रदान की गई। अगर ब्रह्म संहिता में आप पढ़ते हो तो उसमें स्पष्ट वर्णन आता है कि गणेश जी भी विघ्न विनाश करने की शक्ति भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? भगवान श्री कृष्ण से। लेकिन हमारी जो संसार के लोग हैं वो थोड़ा सा अल्प ज्ञानी होने के कारण देवी देवताओं की पूजा की ओर आकर्षित हो जाते। कभी कभी हमारे जो नव दीक्षित भक्त होते हैं, नवीन भक्त होते हैं, वो देवी देवताओं के पूजा करने वालों झगड़ा करने लगते हैं। नहीं नहीं, ये देवी देवताओं की पूजा बंद करो और भगवान की पूजा शुरू करो। यद्यपि ये बात तथ्यात्मक रूप से सैद्धांतिक रूप से बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके प्रस्तुतिकरण जो है वो थोड़ा सा समय अनुकूल नहीं होता। जिस तरीके से कोई बढ़िया भोजन बनाए और आपसे क्रोध के कारण कहे कि एक ठूस लीजिए, खाना है खाइए नहीं तो भाग जाइए, आप कहेंगे अरे ऐसा भोजन हम नहीं करेंगे। और कोई रूखी सूखी लेके खड़ा और प्रेम से कहे आइए और भोग लगाइए, आप उसके प्रेम के खातर जैसे भगवान राम ने सबरी के क्या खा लिए, बेर खा लिए। तो कोई भी बात आपको कहनी है, पहले संबंध कौन सा होना चाहिए? प्रेम वाला। आप सारी बातें कह सकते, तो कभी कभी हमारे नए भक्त लोग दम हार्ड कह देते एकदम से, देवी देवताओं की पूजा क्या कर दो, नहीं नहीं ऐसा नहीं, पहले हमें उसके पास जाना है, पहले हमें धीरे धीरे उसको गीता भागवत का ज्ञान देना है, और जिस दिन उसको पता लग जाएगा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, वो सुता ही अपनी लाइन पर आ जाए। ये देवी देवता भी भगवान की लीलाओं को कहीं ना कहीं तुष्ट और पुष्ट करते हैं। ये शिव भी क्या है, देखो शिव में अगर ई की मात्रा हटा दोगे, ईश्वर तत्व हटा दोगे तो क्या रह जाएगा, बोलो। शिव में से अगर ई हटा देंगे क्या रह गया, शब रह गया। महामंत्र नित्य जपे महेशु, हर समय महादेव शंकर जी शिव जी भगवान का गुणगान करते रहते हैं, उनकी लीला में आनंदित रहते हैं, इसलिए वो शिव कहलाते। जो आत्मा भगवान के नाम का सुमिरन नहीं करेगी, जाप नहीं करेगी, वो शब की तरह रहेगी, चाहे रामायण पढ़ लें हम, चाहे कोई सा ग्रंथ पढ़ लें। अगर कान भगवान की कथा नहीं सुन रहे हैं तो सांप के बिल के समान है, आंख अगर भगवान के दर्शन नहीं कर रहे हैं तो मोरपंख के समान है। इसलिए हमें हर हालत में अपनी इस आत्मा और शरीर के योग से जो हमें जन्म मिला है, इस जन्म को सार्थक करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने हमें आदेश दिया है कि अगर आप जन्म सार्थक करना चाहते हो तब आपको कृष्ण भावना व्रत होना चाहिए। किसी वैष्णव आचार्य की शरणागति करके निरंतर भगवान के नाम के हम 16 माला का जप करके नशा मांस जुआ लाठी सट्टा व्यभिचार से बचकर हम अपने जीवन को शुद्ध कर सकते हैं, और जो हमारे 84 लाख योनियों का परम लक्ष्य है वैकुंठ प्राप्ति करना, हम पा सकते हैं। तो समय पूरा हो रहा है, किसी का कोई प्रश्न हो है? हाँ जी बताए। क्या नाम है आपका? चलिए, पहली बात तो मैं स्वामी नहीं हुआ है मैं दास हूँ हरे कृष्णा। भैया मैंने आपसे व्याकरण की मात्रा हटाने के लिए नहीं कहा था, मैंने कहा था कि जिस मनुष्य के अंदर से ईश्वर तत्व चला जाएगा, ई मैं यहाँ व्याकरण की मात्रा नहीं कह रहा हूँ। शिव जी परम वैष्णव है तो मैं तो एक तुच्छ वैष्णव हूँ। शिव जी जो वैष्णव होता है वो सबको एक दृष्टि से देखता है। अगर गीता पढ़ेंगे तो चंडाल में, स्वान में और पंडित में वो कैसे दर्शन करते हैं? समदर्शिना। नहीं समय मेरा पूरा हो रहा है ना, मैं तो अभी मैं आपको काट देता हूँ, मिलता हूँ ना, बैठ एक घंटे बैठता हूँ मैं आपके साथ, इनका जाया क्यों करूँगा मैं कहीं भागने वाला नहीं। हरी बोल। ठीक है मैं अभी आपके साथ बैठता हूँ। अन्य कोई किसी का प्रश्न हो? नहीं नहीं कोई नहीं, बहुत बढ़िया करा। आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी, चार प्रकार के लोग ही तो भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं, आप उसमें से एक हैं जी। बताइए और कोई नहीं, दोनों हाथ उठा के बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बोलो जगत गुरु प्रभुपाद की, बोलो श्री कृष्ण बलराम की, श्री गौर निताय भगवान की, श्री राधा श्याम सुंदर की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा।